अल्लाह माफ करें कि हर घर के अंदर मौजूद हो गई ये बीमारी। इस बीमारी से हमारे बच्चे भी इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ भी इफेक्ट कर रही हैं, हमारे घर वाले भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा जोर है इस बीमारी का। अब समझ नहीं लग पड़ती कि आदमी ये क्या करे इसका, और जैसी जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है इसके इलाज को समझ नहीं, करता ही नहीं आदमी। अपनी तरफ से तो हम बहुत जोर लगाते हैं कि भाई हम इनको सही करें, हमारे ये क्यों हमारे बच्चे नाफरमान हैं, शोर मचाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं। उस वक्त चीखते हैं जब सर से पानी ऊपर हो जाता है, तो फिर तड़पते हैं, फिर क्या करें। बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो आपको बता रहा हूँ, और इस पर अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो ये तो कोई भी नहीं बचेगा, बस घर के अंदर बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका इलाज नहीं है हमारे पास, रिसर्च नहीं किया हमने उस पर क्यों है ये ऐसा। लोगों ने सहारा लिया, चलो ये एक अजीब बात है कि बच्चों को दीन पढ़ाओ, कुरान हिफ्ज़ करा दो, आलिम बना दो, हदीसें दे दो। उसने भी कोई इफेक्ट नहीं किया तो और भी काम खराब हो गया। हजारों से हाफिज हैं बेचारे, सीनों में कुरान है, सब काम चल रहा है। बुखारी और सारी हदीस पड़ी होती हैं, फारिग हुई होती हैं औरतें, लड़की हैं, काम सारा चल रहा होता है। तो एक और इसमें एक और बीमारी शामिल हो गई। अब हमने समझा था यही इलाज है, अभी चलो ऐसे कर लेते हैं, इससे शायद हमारा माशरा सही हो जाए, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे, तो इस तरफ लगा देते हैं भाई, चलो ये इस तरफ ये भी करें, ये भी करें, है ना भाई ऐसे। तो फिर इससे क्यों नहीं रुके, असर ही नहीं हुआ कुरान का, हदीस भी असर नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एक आप बीमारी हो जाती है, आप जाते हैं कहते हैं एंटीबायोटिक हर बीमारी को ठीक करती है, आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं, मैक्सिन खा लेते हैं, राजी नहीं हो रहा, डॉक्टर पा जाते हैं, कौन सी दवा खाई मैक्सिन, कि तू पागल हो गया, ये तो मार ही नहीं सकती, है तो एंटीबायोटिक लेकिन ये दवा काम नहीं करेगी इस पर। ये दवा लेके आता कि हमने रिसर्च किया कि जो अंदर तेरे जरासीम अंदर इस बीमारी के हैं, इस एंटीबायोटिक से नहीं जाएंगे। जो भी कहते हैं डॉक्टर पर खुद कभी दवा इस्तेमाल ना करो, हर चीज़ में एंटीबायोटिक्स होता, सही है नहीं। हमें अब तक अपने तक सोच लिया कुरान इसका इलाज करेगा, हदीस इसका, बस आलिम बना दो, आलमा बना दो, ये कर लो तो फलां कर दो, वहीं के वहीं मामला है ही, देखना दिन रात देख वहीं के वहीं। तो भाई ये क्या इलाज हो सकता है इसका, इस बीमारी का क्या है। फिर सोचते हैं यार क्या हो गया, तो इस पर एक और अजीब बात हो गई कि जब ऐसे बच्चे बच्चे काम करते हैं जिन्हें पढ़ ली हदीसें कुरान पढ़ लिया वो करते हैं, तो एक और एक वार्न पे और चलता है, देखा मजहब क्या फायदा हुआ, हमने कुरान भी पढ़ाया सब भी हुआ तो तब भी बदमाश हो गए, तब भी खराब हो गए, लोग ताने देते हैं, क्या फायदा इनको तुमने कुरान पढ़ाया। बिल्कुल कुरान का कसूर नहीं है, कुरान बड़ी जबरदस्त चीज है, आलिम बनना बहुत बड़ी चीज है, कुरान हदीस से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। अपने बच्चों को ये पढ़ाना बहुत आला चीज़ है, हो सकता नहीं कि बच्चा हाफिज़ और कुरान हो और हदीसें पढ़े, उससे बेहतरीन कोई इलाज दुनिया में हो सकता है, कभी नहीं। इसकी वजह है, वजह यह है कि वो इस बीमारी को ख़त्म ही नहीं कर सकता, वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। बहुत बड़ी चीज़ होती है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी लोग मुनहरिफ हो जाते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह दिन से मुनासिब हो जाते हैं कि बच्चा फायदा कुरान पढ़ाने का, ये कुरान का हमें तो ये भी किया था कि हमारा बच्चा सही हो जाएगा, हमारी बच्ची से हो जाएगी, लेकिन फिर भी खराब हो गई, है ना भाई ऐसे। तो एक और अजीब फितना और पैदा हो गया, लोगों की और जहन ही खराब कर दी, दीन की तरफ से भी कुरान की तरफ से भी लोगों को, बहुत से लोग मुनकर हो गए इस बात से, सही तख्सीस नहीं कर रहे, वजह इसकी नहीं देख रहे, वजह इसकी है क्या सोचते भी नहीं। फिर ज्यादा से देखो जी हमने तो कुरान पढ़ाया था बच्चे, अब एक दफा और क्या ले आएंगे, फिर ये तो जी जादू कर दिया किसी ने, चलो जी अमलों की जी मजे लग गए, अब तो हो ही नहीं सकता था हमारे बच्चे हमारे कुछ होता, बच्ची हो ही नहीं सकता, ये तो जी फला थी, उसकी नानी थी, चाची थी, उसने जादू किया है जी, पक्का जादू हो गया जी, ये फला गाँव से आ रहा जी इंडिया के, वो बैठा एक जादूगर बहुत बड़ा, उसने जादू किया है। माशरे की बात कर रहा हूँ आज की, जो हमें जो बीमारी है, तकीर नहीं कर रहा हूँ, बस जी जादू हो जादू जादू बस जादू हो। आमिर के पास वो ठगना शुरू किया, ऐसी तस्वीर निकालती मर्ज वहीं वहीं, किसी किसी की बदमाशी को किसी जादूगर ने सही नहीं किया, किसी बच्चे को सही नहीं किया, ताविज नहीं कहूँगा, अमलियात होते हैं, किसी अमल ने उसको सही नहीं किया। नहीं जी ये नहीं, वो बड़ा पहुंचा आदमी उसके पास चलते हैं, नहीं करेगा। हत्ता कि ये कि किसी अल्लाह वाले के पास जाके आप दुआ कराएंगे, उसकी दुआ भी नहीं चलती, काम करती, ये होता है। कितनी सख्त बीमारी है। अब इसकी वजह, क्योंकि हम इस्तेमाल दुआ सही नहीं कर रहे, तो भाई इसकी कौन वजह बता सकता है, इसकी है बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज हमारा समाशे का। रो रहे हैं सर पकड़ के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा फलां, पागल हो रहे हैं, लेकिन इलाज की तरफ नहीं आते। देखिए कुरान बताता है, कौन बता सकता है कुरान के अलावा, कोई और चीज़ है हमारे पास? वाहिद अगर कोई चीज़ नहीं इस हालत को बता सकती निकलने के लिए, तो एक ही चीज़ है, और क्या है वो? कुरान बताता है इलाज इसका, सिर्फ वाहिद। और ये इलाज नहीं करेंगे तो बर्बादी बर्बादी होती रहेगी हमारी, बहुत फौश और बुराइयों से भर जाएगा हमारा माशरा, घरों के अंदर से निकलेंगे, अभी तो कुछ भी, इससे भी ज्यादा। कुरान कहता है देख, रोज सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, या अही लजीन आमनो, किससे खिताब कर रहे हैं अल्लाह ताला? ईमान वालों से। मसले तो हमारे ही है ना, ईमान वालों की। या अही लजीन आमनो ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, ईमान वालों शैतान की तबाह मत करो, पूरे तबाह के कदम ब कदम। अल्लाह एक तो होती है ना उसकी तबाह करना, लेकिन तुम तो ऐसे तबाह कर रहे हो कि कदम ब कदम कर रहे हो, कि एक कदम वक्त से ये चल रहा है वो चल रहा है, हर कदम पे पांव रखना, तो ये गया कि एक हिस्सा भी तुम ऐसा नहीं छोड़ रहे कि जो शैतान के मुताबिक हो, मत करना ये काम। अल्लाह कहते हैं ये हल जिन शैतान, शैतान का पैरवी मत करना, किसी हालत में तबाह मत करना। क्यों भूमई ये तब खुतवाती शैतान, क्या होगा? फैन ना हो या मरो बिलफाशा मन कर, सुभान अल्लाह बता दिया कि इसकी वजह यही है कि सारी फाशी और बदमाशी और बुहाई की वजह एक यह है कि तुम शैतान को इतबा करते हो, शैतान की बात मानते हो, तो शैतान तुम पे इतना गालिब हो जाता है। या मरु अल्लाह कहते या मरु, यानी हुक्म करता है तुम्हें, इल्तिजा नहीं करता, रिक्वेस्ट नहीं करता, हुक्म कौन करता है? जो ताकतवर बादशाह हुक्म करेगा, आपका बॉस हुक्म करेगा, जो आपसे बड़ा वो हुक्म करेगा, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो वो शैतान के साथ इतना मिक्स हो गया वो आदमी, उसके अंदर शैतान को इतना पावर दे दी उसने अंदर कि पूरा शैतान ने उसको कंट्रोल कर लिया है, और कंट्रोल कर दी या मरो, वो हुक्म देता है उसको कि चल बदमाशी कर, चल फैश काम कर, चल जना कर, चल बेईमानी कर, चल हराम खा, चल ये कर। या अमर वो जो हुक्म देता है उसके हुक्म को आप टाल भी नहीं सकते। इलाज पता लग गया, देखिए जो हुक्म चलेगा सारे अंदर तुम्हारे, जो जितने भी चलेंगे ऑर्डर तुम्हारे जो चलेंगे, वो शैतान पर्दा उतारो, फलां करो, ये करो, बाजे बजाओ, गाने बजाओ, जो वो अंदर हुक्म दे रहा है, एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज तुमने उसको कबूल कर लिया है अपना लीडर, अल्लाह ने मना किया था ये मत काम करना। मैं यद तब फुतवाती शैतान फैन न हो या मरो बिलवाशा न होकर, बात समझ जाएगी। अल्लाह ताला ने तशखीश कर दी इलाज की, तशखीश कर दी, रिसर्च होगी, कुरान कर दी कि जितनी भी फाश बदमाशी हैं, नाफरमाई हैं, और जितनी नाफरमानी हो रही है घरों में, जो बच्चे ख़राब हो रहे हैं, जो होते रहेंगे, उसकी वजह सिर्फ यह है कि शैतान को हमने अपना सरबरा मुकर्र कर लिया है, और उसके हुक्म मुताबिक चल रहे हैं, जो कह रहे हैं हम वसी करते हैं। और वो तो हमेशा ये अपने काम पे लगाएगा तुम्हें, कोई चीज नीची तुम्हारी आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप अल्लाह का इलाज भी होते हैं, इससे बचने का अल्लाह कहता है एक ही इलाज है, कोई और दूसरा इलाज नहीं है, जो अल्लाह बताएगा इलाज तो वही होगा ना जी, दूसरे इलाज तो हो ही नहीं सकता। सब लाइनें बंद कर दी तुम्हें अल्लाह, कुछ सब कोई इलाज नहीं। वलौला फदलुल्लाह अलैकुम, अल्लाह ताला कहते हैं वलौला फदलुल्लाह अलैकुम व रहमतहु मा ज़का, सुभान अल्लाह। किस तरह कुरान ने बात समझाई कि ये तो मेरा फजल है, लगाता है मेरी रहमत है, मैं तुम पे कर्म किया है, जिसको तुमने बोझ बना लिया है, मुसीबत बना ली है, परेशान होते हैं जिससे तुम, ये तो एक्चुअली कहता है अल्लाह तआला कहता है मेरा फजल है, मेरा रहम है, मेरा कर्म है तुम्हारे पर ईमान वालों, कि मैंने तुम्हें इसका इलाज बता रहा हूं, मैं तुम्हें इसका इलाज बता रहा हूं। माजका, अगर ये इलाज ना होता तो मैं अल्लाह अल्लाह घंटी देता है कि कोई दुनिया की ताकत तुम्हें बचा ही नहीं सकती थी इस वाहिशी से बीमारी से, और कोई इलाज है नहीं। माजका देख लो कुरान में, तो वह फजल अल्लाह का फजल और रहमत अल्लाह ने जो हमें दी है इस बचने के लिए, जिससे हम बच जाए, कोई और चीज नहीं। अल्लाह ताला कहता है बस वाहिद वो चीज है जो मैंने तुम्हें दी है, जो इस चीज से बच सकते हो। किस चीज से? इत्तबाए शैतान से, एक चीज बचा सकती है तुम्हें और कोई नहीं बचाएगा, ना नमाज बचाएगी, ना तुम्हें हज बचाएगा, ना रोजा बचाएगा, ना कुरान बचाएगा, ना इल्म बचाएगा। अल्लाह कहता है कोई चीज नहीं बचा सकती, माज़ा सिर्फ एक चीज बचाएगी जो बचा सकती है, वो क्या होगा? मेरा खास फजल होगा, मेरी खास रहमत होगी तुम्हें बचाएगी। और वो क्या सबसे बड़ी रहमत और फजल है मेरी? कि मैंने सुभान अल्लाह इत्तबाए शैतान की जगह तुम्हें इत्तबाए रसूल दे दिया। सुभान अल्लाह, इत्तबाए शैतान की जगह इत्तबाए रहमतुल आलमीन दे दी। आप सुन तशरीफ लाना जो था, अल्लाह कहता है ये मेरा इतना फजल है, इससे बड़ा कोई फजल नहीं, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं। तो दो रास्ते हो गए, अल्लाह ताला ये काम, ये दुनिया बनी इस तरह से कि एक तरफ शैतान जोर मारेगा, अपनी तबाह पे लगाएगा, तुम्हें पीछे लगाएगा, और सुभान अल्लाह दूसरी तरफ मेरे महबूब खड़े होंगे, मेरे महबूब खड़े होंगे, वो तुम्हें पुकारेंगे कि आओ मेरी तबाह। जिन लोगों ने नबी पाक की इत्तबा कर ली, इत्तबा को अख्तियार कर लिया, आपकी सुन्नतों को रास्ते को अख्तियार कर लिया, सुभान नहीं पता कि शैतान और दखल भी कर जाए उस मामले के अंदर, फाशी भी दाखिल हो जाए। कौन कह रहे? कुरान कह रहे। अब हम देखते हैं, देख लें कितनी आलम बना लें, आलिम बना लें, सब कुछ बना लें, क्या हमारे घर के अंदर, हमारे हालात में अंदर, जो कि आलिम बन रहे हैं, आलम बन रही है, जो भी जिससे हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या उसके साथ हमारी जिंदगी के अंदर इत्तबाए रसूल है? अगर इत्तबाए रसूल नहीं है तो शैतान तो आएगा अंदर, डेफिनेटली आएगा। बल्कि इतना जबरदस्त मामला है शैतान का, मैं आपको मिसाल देता हूं, नमाज से बड़ी कोई चीज है? अभी आपने नमाज पढ़ी, इससे बड़ी कोई इबादत है नहीं? और फिर वो हालत, आप जमात के साथ खड़े हों, आगे कुरान इमाम सुना रहे हों, आपने बाकायदा नीयत बांधी हो और इतनी बड़ी इबादत में खड़े हों, इससे बड़े कोई एक्शन है भाई इबादत का? है नहीं? अल्लाह ताला क्या कहते हैं सुभान अल्लाह, कि यहां भी अगर तुमने तबाए रसूल के मुताबिक खड़े नहीं हुए उस सफ के अंदर, तो तुम्हारे बीच में शैतान मौजूद हो जाएगा। इस जगह भी हमें अगर सुन्नत के मुताबिक हमने उस जगह को इस्तेमाल नहीं किया, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कर रहे हैं, अगर बीच में हमने सफ़े नबी पाक सुन्नत के मुताबिक कायम नहीं की और बीच में जो जगह छोड़ेंगे, शैतान फौरन वहां के दाखिल हो जाएगा और आपस में तुम्हारी लड़ाइयां करा देगा। समझ आएंगे? तो कोई चीज भी ऐसी जो नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ होगी, कोई फेल, कोई इबादत, कोई चीज भी, कोई हज, कोई जकात, कोई सदका, कोई चीज भी अगर जिसमें नबी सुन्नत के खिलाफ होगी, वहां डेफिनेटली दूसरी चीज होगी, वो क्या होगी? शैतान का दखल होगा उसमें। हम हमारी जिंदगी में देखें, नमाज पढ़ के जा रहे हैं, तस्बीह करके जा रहे हैं, जिक्र करके जा रहे हैं, तीन सिपारे पढ़ के जा रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, हो रहे हैं दाखिल, लेकिन कौन से तरीके से हो रहे हैं? हमने कभी सोचा कि हम किस तरीके से अंदर जा रहे हैं? जी नमाज पढ़ के या फिर डालों के अंदर, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तरीका नहीं है मेरा, ये तो शैतान का तरीका है, अंदर आने दो, ये दुआ पढ़, जब तू ये दुआ पढ़ेगा तो पीछे शैतान के गौर तेरे साथ लगे हुए हैं, तू कोई पैगंबर बन के नहीं आ रहा, तू पैगंबर बन के नहीं आ रहा, कोई इतनी बड़ी चीज बन के नहीं आ रहा, कोई नबी बन के नहीं आ रहा, तो एक आम आदमी बेशक कितनी बड़ी इबादत करे, और तेरे पीछे शैतान मुकर्रर किए हैं अल्लाह ताला ने, और शैतान को पूरी ताकत दी हुई है, तो पीछे चल रहा है कि हमें खत्म करना है, और जैसे ही तूने घर के अंदर कदम रखा और खिलाफ सुन्नत तो दाखिल हुआ, और दाखिल होने की इच्छा थी, शैतान के गौल तेरे साथ दाखिल हो जाए, कच्चा खत आगे नहीं, शैतान भाई आगे अभी सोच रहे, शैतान तो अंदर आ गया, अब उसने फहश और बेहयाई के काम कराना शुरू कर दिया, दिमाग को कैप्चर कर लिया, उसने हुक्म देना शुरू कर दिया, चले यार आज तो थोड़ी देर यही कर लेते हैं, और चल जाए आई गलां कर देने, क्या वो थोड़ा या बस उसने अंदर ठुस मारना शुरू कर दी, अब वो फैश काम की तरफ लगाना शुरू कर दिया। एक सुन्नत को कता करके साथ जो हम काम करते हैं, एक सुन्नत को कता करके जब हम काम करेंगे बगैर सुन्नत के, तो उसी वक्त शैतान का दखल उसमें हो जाएगा। तो समझ मामी बात समझते, घर में गए अंदर गए, नबी हम तरीका मुबारक क्या था, समंदर में जाओ तो सलाम करो सबको, है तरीका, कितने लोग हैं भाई जान, बड़े बड़े इबादत गुजार लोग होंगे, जाते हैं अंदर जाके, क्या पकाया, वो क्या कर रहे हैं, फला ही बंदा है, बस क्योंकि शैतान से आता है, उसने कहा जी आज मैं तेरे दाल पकाई, तो तेरी असली तस्वीर दाल ही खान, घर में आप सात तलाकिंग हो जाती है इस बात पर, बताया क्या है, और जब होश आता है कि ये कोई बात थी तलाक देने की, लड़ने की बात थी, इतनी बात बढ़ा दी शैतान, क्यों, तो उसने एक काम, अब उसको गुरूर क्या है, नाते जी नमाज पढ़ के आया, मैंने तीन सिपारे पढ़े हैं, मैं तो जिक्र अल्लाह भी किया है, मैंने फलां किया है, तो शैतान के दखल नहीं, एक एक्शन जो हमारा, एक चीज भी, मामूली सी चीज भी हमारी होगी जो सुन्नत के खिलाफ होगी, उसमें तबाह शैतान होगी। दो चीजें नात नोट कर लें फार्मूला, या तो इत्तबाए सुन्नत है या इत्तबाए शैतान, पानी पिया दो चीजें हैं, या तो इत्तबाए सुन्नत होगी या इत्तबाए शैतान होगा, किस वक्त होगा शैतान, हमने सुन्नत के खिलाफ पानी पिया, खड़े होकर पिया, तीन घूंट के बगैर पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया, ना पढ़ के पिया, हाथ पैर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ सब सब एक्शन हो रहे हैं सारे, तो कितनी बड़ा आदमी हो, कितना बड़ा जाकिर शाकिर कुछ भी हो, यह शैतान, क्योंकि इत्तबाए शैतान हो गया ना, ना आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये पानी का पीना आपके लिए फबारे चांद बन जाएगा और मुकम्मल शैतान दाखिल हो जाएगा। भाइयों छत के ऊपर आप मेरे साथ अक्सर है, घर के अंदर होता ही आदमी के साथ, ये छत के नीचे जहां आप कुछ टॉयलेट है उसमें पहले एक छोटा सुराख होगा, पता नहीं चलेगा पानी आ कहां से रहे, ऐसे होता है ना, तो वो सुराख बढ़ता रहेगा, तो एक सुराख को इग्नोर करें, थोड़े दिनों में आपको छत तब्दील करानी पड़ती है, वो एक छोटा सुराख काम करता रहता है, अपना बढ़ता रहता है, पानी आता रहता है, आता रहता है, वो छत बर्बाद करती है। तो एक खिलाफ सुन्नत जब हम काम करेंगे तो एक सुराख भी हो गया जहां से शैतान आ सकता है, वो शैतान बढ़ता रहता है। औलाद नाफरमान, मुझे बताओ कितने लोग हैं जो मैं अब समझ आएगा कि इलम बहुत अच्छी चीज है, कुरान बहुत अच्छी चीज है, आलिम बनना तो बहुत ग्रेट चीज है, लेकिन ये सब करते हैं और सब काम हमारे किसके खिलाफ होते हैं, सुन्नत के खिलाफ होते हैं, तो बर्बाद हो गया। हो तो गए हाफिज, रात को देख रहे पिक्चरें कर रहे हैं वाशी, तो जो काम भी हमारा सुन्नत के खिलाफ होगा, तो जो इल्म अल्लाह ने दिया, जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी, जो पांच कुरान सुबह से शाम तक हमें पढ़ाए, जो जिक्र करने की तौफीक हमें नेमतें ना दी, लेकिन सबको हमें जाया क्यों कर दिया, कि हमने इत्तबाए शैतान कर ली, इत्तबाए रसूल को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि भाई इसका कुछ इलाज नहीं है, अगर तुम अपनी फाहशी को, बदनामी, بے حیائی کو روکنا چاہتے ہو, اپنے بچوں کی, اپنے آپ کو, زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو, کوئی چیز نہیں کرے گی. تمہیں ہر چیز کے ساتھ اتباع سنت کو لازم کرنا پڑے, اپنے ہر عبادت کے ساتھ, اپنے ساتھ کسی چیز کو آپ نہیں کر سکتے. یہاں نبی ہم کیسے کیا تھا, آپ سوئے کیسے تھے, آپ گئے بستر پہ, نہ کوئی دعا مانگی, نہ کوئی طریقہ استعمال کیا, نہ آپ نے کوئی وضو کیا, نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ دعا مانگی, کچھ بھی نہیں کیا. جو طریقہ ہے بستر پہ جانے کا, گئے چیز کپڑے اتارے اور جہاں بس پڑھ کے سو گئے, شیطان آ گیا. صحیح ذات آپ کو ذلیل خوار کر دے گا, آپ کی ساری عبادت کو ختم کر دے گا, جانور کے جام. اور یہ ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود بھی انسان کے اندر نور نہیں جاتا ہے. معمولی چیز ہے, قرآن کا ایک سپارہ آدمی پڑھ لے, اللہ اکبر, میں کہتا ہوں سبحان اللہ. تو اگر انسان بیٹھ کے وضو کر کے ایک آیت بھی قرآن کی پڑھے تو اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ دل ایسا نور اور نور ہو جاتا ہے. اللہ کا کرام ہے. ایک سیدھا مسجد میں آ کے آدمی کر لے سبحان اللہ اتباع رسول کے ساتھ, واللہ ہی اس کو تو مزے اتنا سرور آتا ہے اس سجدے کے اندر کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم جو سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ ساری رات عبادت کرتے تھے, ساری رات قرآن پڑھتے تھے, تو ایک سو مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کوئی بات ہے, یہ کس طرح کوئی ساری رات قرآن پڑھ سکتا ہے, ساری رات یہ کر سکتا ہے. تو کیا پتا کہ ان کی زندگی اتباع رسول پر تھی. جب اتباع رسول کے ساتھ آپ جو عبادت کریں گے اس کا تو مزہ ہی انسان ہی پوچھ لیتا کیسا مزہ ہوتا ہے, سوچ نہیں سکتا اس کا مزہ ہے کیا, کیونکہ ہماری زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے. سجدے تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے, ہمارا کاروبار, ہمارا کھانا, ہمارا پہننا, ہمارا اٹھنا, ہمارا جانا, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن, ہمارا اندر, ہمارا باہر, کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا یہاں پہ حکم کیا ہے نبی پاک نے. جبکہ کیا ہے, قدم با قدم اللہ نے کیا ہے, یا الذین اللہ تعالیٰ آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ قدم قدم کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ہم نے اتباع کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے, قدم با قدم کرنی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی سمجھنے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو. یہ کوئی بات ہے یار, ٹوائلٹ میں جانا کوئی بتاتا ہے, بیٹھنا کوئی بتاتا ہے, وہاں کے آداب کوئی سکھاتا ہے, استنجا کرنے کا طریقہ کوئی بتاتا ہے کہ تین ڈیلے استعمال کریں, آج تو ڈیلے کی جگہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹشو ہے, تو اس کو تین دفعہ استعمال کریں. پتہ نہیں کس کو کیس کرنا ہے, کس طرح استعمال کرنا ہے, آگے سے پیچھے لے کے جانا ہے, پیچھے سے آگے لے کے جانا, پھر اس کو گھوم, یہ تین طریقے بتائیں کیا کہ آپ پہلے آگے سے پیچھے لے کے جائیں گے ٹیشو کو, پھر پیچھے سے آگے لے کے جائیں گے, پھر اس کو بیچ کے اندر اس کو ایسے گھمائیں گے. یہ سننا تھا نہیں لوگ, ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو رہا ہے, اتباع گزرا شیطان نہیں گزرا تو پھر فاش ہو, پھر حکم کیا دے گا ہمیں, ناخن کا کاٹنا مجھے بتایا, کوئی سمجھتا ہے بھی کس طرح ناخن کاٹ, پتہ ہی نہیں. ناخن ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے شروع کریں, شہادت کی انگلی شروع کریں, بیچ والی انگلی, پھر یہ انگلی, پھر یہ انگلی, پھر ادھر آ جائیں, پھر چھوٹی انگلی, یہ انگلی, یہ انگلی, پھر شہادت کی انگلی, پھر اس کا انگوٹھا, پھر دوسرے کا انگوٹھا. امام غزالی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ, کتنے بڑے اور فقیہ ہیں جنہوں نے اس کو وہ بنایا ہے, ٹاپک بنایا ہے, عنوان بنایا ہے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے ناخن کاٹ لینا, ان کو کیا پتا کہ مسلمانوں کے لیے تو ہر چیز جو اللہ پاک نے دی ہے اس میں دو ہی رنگ ہیں, کیا اتباع رسول ہے, کیا اتباع شیطان ہے. شکل بنا لینا, بنا لے جیسی چاہے, جیسی ڈالی رکھ لینا, لیکن کیا ہے, واحد اتباع سنت جب ہوگی جب نبی ہم سنت کے مطابق ڈاڑی ہوگی, ڈاڑی نہیں ہوگی. کوئی اتنی رکھ رہا ہے, کوئی اتنی رکھ رہا ہے, کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے, ادھر سے کاٹ رہا ہے, ادھر سے کاٹ رہا ہے, کہہ رہا ہے ڈاڑی, وہ کیسے ہوگی, وہ اتباع شیطان ہے. اتباع سنت کیا ہے, اس میں پتہ ہے ڈاڑی ایک مشت ہو, یہ اتباع سنت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈاڑی وہ کیا ہے, اتباع شیطان ہو رہی ہے, وہ ڈاڑی فحش کا حکم دے رہی ہے اس کو, وہ ڈاڑی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے جو اس کو ڈاڑی کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ شیطانی کرتا ہے, اس کے ساتھ گندی چیزیں دیکھتا ہے. اس طرح جو لڑکا لڑکی عالم بننے کے بعد, بخاری پڑھنے کے بعد, ان سینے میں ہونے کے باوجود فحاشی زنا کرتے ہیں وہ لوگ, کیوں کہ ان کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے. ان کی دیکھا کتنا بڑا ٹاپک اللہ بتا رہا ہے, कि तुमने तो उसको सवार कर लिया, तुम कैसे बच सकते हो मेरे भाइयों का? आज ये तो दुनिया का भी आखिरत का मामला है इंसान के लिए। कभी इंसान कामयाब नहीं होगा आखिरत में, आप बता दूं, जिसका हर सांस नबी मोहम्मद सुन्नत के मुताबिक ना हो। इसका एक ही फार्मूला है कि जब भी किसी एक्शन में आए पता नहीं इसकी सुन्नत क्या है, बस हर एक्शन के लिए। दुकान पे जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, ग्राहक से बात कर रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, दोस्ती हो रही है, मामलात हो रहे हैं, रिश्तेदारों से मामलात हो रहे हैं, दोस्तों से मामलात हो रहे हैं, पड़ोसी से मामलात हो रहे हैं, दुश्मनों से मामलात हो रहे हैं, किसी से कोई मामला चल रहा है, जो कुछ भी है सब कर, जितना भी दुनिया का चल रहा है एक मोमिन के लिए एक ही दायरे के अंदर चल रहा है। तो पूछते चले जाओ नबी पाकम से और अदा करते चले जाओ। यही कुरान कह रहे हैं, मां जका हो सकता नहीं कोई इंसान पाक हो जाए इसके बगैर, साफ और शफाफ हो जाए इसके बगैर, जिस नबी ने सुन्नत को अदा ना किया। और जैसे जैसे सुन्नत में पड़ जाएगा, पढ़ जाएगा, जैसे सर नंगे सर रख लें आप नमाज पढ़ लें, ऐसी होगी नमाज, उससे आगे बढ़ लें, आपने टोपी रख ली और बहुत करीब आ गया सुन्नत के, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इमाम रख लिया बहुत करीब आ गया सुन्नत के, तो जो सुन्नत की जो कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक शरीर लिबास आपने पहन लिया, ये कोट पतलून नहीं, जो कोट पतलून पहन के आगे नमाज में पढ़ते हैं ये तो वैसे खिलाफ अल्लाह ताला को नाराज करने वाली चीज़ है, हमारा लिबास नहीं है। पहने बाद अर्श करें जो कुछ करते हैं, लेकिन जब नबी के दरबार में हाजिर हों तो वो पसंदीदा लिबास पहन के आए जो अल्लाह के नबी और अल्लाह को पसंद है, बस। तो नाराजगी वाली बात है, वहाँ बाहर अपने काम पे पहने कोई मना नहीं किसी, जब इबादत गाह में आप आ रहे हैं, जब सिजदे करने जा रहे हैं, तो मुसल्ले पे आप खड़े हैं, तो आपको तो जेब नहीं देती ये चीज़, बताएं इसमें क्या खतराब है? हमारा लिबास ये नहीं है, वहाँ से क्या चलेगा? शरीर लिबास चलेगा। शरीर लिबास है कि आपको सतह ढक जाए, आपके टखने घट जाए, हाथ जो शरीर लिबास तो ये है ना, सतह नजर ना आए आप, तो ये शरीर लिबास तो नहीं है ना, जिससे नमाज अदा करते हैं। तो फिर क्या है भाई, वो लिबास पहन ली शरीर आपने, अब जैसे जैसे उस शरीर लिबास को आप सुन्नत के रंग में लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के करीब करेंगे, आप सुनके सहाबे किराम का असल लिबास क्या चलता था, क्या पहनते थे, तो वैसे ही जो अल्हम्दुलिल्लाह रंगे रसूल चलता चला जाएगा, इत्तबा बढ़ती चली जाएगी, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता चला जाएगा। फरमा दिया मन अहब्बा सुन्नत अहब्बा, नहीं जो मेरे सुन्नत के करीब होता चला जाएगा वो मेरा महबूब बनता चला जाएगा। ये तो छोड़ दिया, नहीं जी हम तो इस जुलूस निकाल के होंगे, तो नाद खानी से होंगे, हम तो फला चीज से होंगे, हम तो ये करके होंगे, हम तो सारी रात ये कर लेंगे, फला सब कुछ करते रहो, तब तो रसूल नहीं है तो सर पे मारेंगे अल्लाह, आप मुंह पे मारेंगे अल्लाह ताला, इससे मुझे ताल्लुक नहीं। थोड़ी सा काम करो, थोड़ा सा भी काम करो अल्लाह को राजी करने के, वो किस तरह होना चाहिए, इत्तबाए। तो मेरे भाई जिंदगी की हर चीज को हम सोचना चाहिए हमारे, कि जहां हमने एक सुनत छोड़ी एक सुराख हो गया, सुराख हो गया शैतान दाखिल हो गया, शैतान दाखिल हो गया उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। हमारा ये काम होना चाहिए कि जैसे जिस वक्त हम छत बनाते हैं ऊपर वो लगाते हैं टैप लगाते हैं, तो हमारा पूरा काम ये होता है कि कोई सुराख ऐसा ना हो जहां से पानी छत पे आए। करते ना भाइयों, कभी ऐसा हुआ कि चलो यार दो तीन सुराख रहने तो पानी आता रहेगा, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, सेलगोन लगाएंगे, टेप लगाएंगे, फिर उसको बार बार देखेंगे भी उसको चला के भाई इसमें सुराख तो नहीं हो रहा। कितनी अत्यासे करते हैं काम, इसके लिए कितनी चीजें बनाई है, सेलगोन बनाया, पता नहीं क्या कुछ बनाया, ये तो जानते हुए बेचते रहते हैं चीजें, हजारों किस्म के नुस्खे बनाए ना दुकान पर रखे हुए, ये लगाएं जी देखें पानी किस तरह बंद होता है, अब फलां करें एक सुराख बंद करने के लिए छत ना डब के, तो अल्लाह पाक ने तो सारे शैतान के सुराखों को बंद करने के लिए एक ही चीज क्या है, तो तबाई रसूल का एक सुराख भी ना छोड़ो, एक सुराख तो छत भी नहीं छोड़े तो अपनी जिंदगी के अंदर एक सुराख छोड़ के तुम फिर कोई नुकसान नहीं होगा तुम, बात समझ आ गई? तो अपनी इबादतों में घमंड ना करें, अपनी सियासतों पे घमंड ना करें, अपने अपनी बातों पे, वाजों पे, कुरान पे, तफसीरों पे, इन पे घमंड ना करें, ये काम नहीं आएंगी। अगर ये सारी की सारी इत्तबाए रसूल के साथ हमारी जिंदगी में चल रही है तो फिर सोने पे सुहागा है, नूर अल्लाह नूर बन जाएंगी, फिर उधर सुनत पे अमल, उधर कुरान सुभान अल्लाह, उधर सुनत पे अमल, उधर जनाब इलम, सुनत पे अमल, उधर बुखारी, वो तो नूर अल्लाह नूर बन जाएगा आदमी, कहीं से कहीं चला जाए।
और अगर ये सब कुछ है तुम्हारी सुनत नहीं है तो सारा खाक बन जाएगा। अल्लाह तो कहेगा मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बुखारी को नहीं जानता, तेरे कुरानों को नहीं जानता, तेरे हजों को नहीं जानता, हक अपने पास ही लाऊंगा। मुझे तो एक चीज दिखा जिसके लिए मैं इस कायनात को पैदा किया, ये कायनात होती ना अगर मेरा महबूब ना होता। सुभान अल्लाह ताला तो कहते हैं ये सब कुछ जो पैदा किया था महबूब तेरी बरकत से है और चलता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तो उसी के खिलाफ काम करता है, चौड़ा होकर आता है उसके खिलाफ आके खड़ा होता है मस्जिद में, उसके खिलाफ आके तो भी सजदे करता है, उसके खिलाफ बातें करता है, उसके खिलाफ आके तो हरकतें करता है, तो काम करेंगे ये मजा रब तो ये रोजे मुबारक पे जाके ये काम करते हैं, खाना काबा के सामने खड़े होकर हम ऐसे काम करते हैं, इतने हम भर गए हैं। इसके नतीजे आप देख रहे हैं आज आलम इस्लाम में, दुनिया में हाल क्या है। पॉलिटिकली मैं बात करना नहीं चाहता ना, मुझे पता है इन बातों का, मैं तो मजहबी ढंग से बात करता हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है डफ तो नहीं इस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, पागल तो नहीं है ना, पता ना हमारा हाल क्या मुसलमानों के। इसमें जितनी कौम आज हमारी बुजदिल है शायद कभी नहीं हुई इतनी बुजदिल, मक्खियों की तरह बुजदिल हम, कोई उठ के भी हमें गाली दे दे हम कुछ नहीं कह सकते, बड़े आराम से कहते ओए खबरदार तू कौन है, दो हफ्ते लगेंगे तुझे खत्म कर देंगे हम, ओए तीन दिन में तुझे खत्म कर दिया, तू कौन होता है, चुप है या नहीं है, सब सब बड़धड़ी रहते हैं फौजी भी सारी चीजें। सुभान अल्लाह, ये खाना काबा था, ये मदीना मुनवरा था, इमाम हुसैन यहीं से उठे थे, अल्लाह यहीं से इमाम हुसैन उठे थे, कहते मैं तुम्हें इस जमाने का इलाज बता के आज जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने कहा था आने वाले जमाने का इलाज आज बता के जा रहा हूं, याद रखना, और इलाज करके दिखाया आपने। सुभान अल्लाह, एक लदनी ताकत के साथ खड़े हो गए, नहीं हो सकता कभी भी, हक के साथ हूं मैं, हक के बगैर बात नहीं मान सकता। तो मेरे भाइयों ये सब उसी वजह से है कि हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह नबी बंगी तबाह नहीं रही, सुन्नत नहीं रही, समझेंगे ना, ये सेंटर पॉइंट है हमारी जिंदगी का और कुछ भी नहीं। इस पे आ जाए तो फिर क्या होगा, हम चाहे कितने भी कमजोर हों, चाहे हमारी कितनी हालत भी पतलोई पतली हो, कमजोर तरीन हर लिहाज से, ना माशियत हो ना कुछ भी ना हमारे पास, लेकिन इत्तबाए सुन्नत हो तो फिर क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मदद आएगी तो आसमान से आएगी, अल्लाह ने करके दिखा दिया। नंगे बदन एक एक मिसाल दी इन्हीं इमामों के साथ, फिर बदर से उतरे जिस तरह बदर उतरे ना फरिश्ते, आज भी हो सकता है अंदाजे बदर पैदा, आज भी हो सकता है। हम जनाब क्या पढ़ते हैं, दुआ कुनूत पढ़ रहे हैं फजर पे, और ये हो रहा है फला ड्रामा, आज ये हो गया फला हो गया, सब हंसने वाली बात है, जस्ट थिंग ऑफ लाफिंग नथिंग एल्स, ये कोई इलाज है ही नहीं इन बातों का, ये ड्रामा है ही नहीं, ये कर लो इतना खत्म कर लो, इतना फला कर लो, तुम्हारे कुनूत पढ़ लो, ये हो गया है वाकई ये इलाज, अल्लाह के नबी ने करके दिखाया कि सुभान अल्लाह यही फजर के वक्त दुआ कुनूत पढ़े आदमी तो ये इतना बड़ी ताकत बन जाता है कि दुश्मन की जरूरत नहीं होती, अल्लाह खत्म कर देता है यही दुआ कुनूत, लेकिन असर उस वक्त करेगी जब इत्तबाए ऊंचा बोले। इसलिए हर आज की हमारी हर चीज खुद हमने तबाह कर दी, कुरानों को हमने खत्म कर दिया, अपने जिक्रों को हमने खत्म कर दिया, इबादत को अपने खत्म कर दिया, इल्म को हमने खत्म कर दिया, बिकॉज़ वी डोंट हैव इत्तबाए रसूल। दुआ करें अल्लाह पाक से, इलाज समझ आ गया भाइयों, बीमारी समझ आ गई, बन गया ना इंजेक्शन इसका फ्लू निकला, किस तरह सही होंगे, अब ये है कि ना किसी आमलों के पास जाएं, मुदबाना अर्ज है लोगों से जो बेचारे फंसे हुए आजकल, सभी फंसे हुए औलादें जो हमारे हाल कर रही हैं, ना आमिल सही करेंगे, ना जादूगर सही करेंगे, ना कुछ भी सही नहीं करेगा, ना कुरान के ख़त्म सही करेंगे, ना ला इलाहा इल्लल्लाह तस्वाना ख़त्म करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मा तज़का अल्लाह ने कह दिया, साफ हो ही नहीं सकते, पाक तुम हो ही नहीं सकते, पाक होने तो वो कौन सा है, अल्लाह वला फ़ज़लुल्लाह अलैकुम वरहमत, जो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल था, जो सबसे बड़ी रहमत थी, मेरे हबीब तो जो मैंने भेजे तुम्हारे पास, इसके अलावा सब यही है और कोई इलाज नहीं है। हिम्मत करो, घरों को पाक करो, अपने आप को पाक करो, अपने बच्चों की ताबीर, इन्हें आधा तीतर आधा वो डेढ़ नहीं, आधे तीतर आधा वो डेढ़ नहीं चलते, कोई बच्चा घर में ना आए जब तक सलाम ना करे, छोटी चीज है, कोई बच्चा दाखिल ही नहीं होता हमारा जो सलाम करना जिसको आता हो अपने माँ बाप को, हाय हो हा ठा ठू कुछ नहीं बताओ, आते ही लगा देंगे गाने बजाने कुछ नहीं। मुझे याद है आज समझता हूँ, हम जब मदरस आते थे स्कूल से छोटे छोटे, हमें खाना नहीं मिलता था, हमें हुक्म चाहिए था कि आपने सलाम करना है, और घर में लोग थे फिर हम आते थे, इतनी आदत पड़ी, दादी जान सलाम अलैकुम, भाई जान सलाम अलैकुम, बड़ी आपस सलाम, छोटी आपस, सबको सलाम करना पड़ता था लाइन से, वहाँ खड़े होकर दरवाजे पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह सब कहें वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, उसके बाद अंदर दाखिल होते फिर खाना मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस उम्र तक मेरी आदत हो गई है, घर में जाता हूँ मैं नहीं देखता कोई छोटा है कोई बड़ा है या बीवी है बच्चे मेहमान है, सीधा जाके पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज यू आदत पड़ी है कि माँ बाप ने तरबियत की ना इस चीज़ की, भाई ये सब चीज़ तो ये है तो भाई सुनत आनी चाहिए। और कितनी बराकातें आती हैं सलाम से, जो बंदा अंदर आता है, एक हदीस तो मौजूद है, जब अंदर इंसान दाखिल हो और सलाम करे तो वहाँ मुफलिस से नहीं आ सकती। और मैंने ज़िंदगी में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं ना था, लेकिन मैं मुफलिस ही नहीं देखी ज़िंदगी के अंदर। क्या चीज़ है, एक सुन्नत है नबी पाक की, अंदर जाओ दुरूशी पढ़ो, सुभानअल्लाह दुरूशी पढ़ो, दुरूशी पढ़ने के बाद सबको सलाम करो, शैतान की क्या मजा आएगी, जरूरत वजह उसको कुछ करें नहीं बताए, खाना खाने बैठेंगे जानों के तब खड़ो के खा रहे हो बैठ के खा रहे हो कुछ भी खा रहे कुछ खा रहे हैं, तब सुनत हो रही है, हर लुक में साथ शैतान जाता है, नबी ने खुद फरमाया हर लुक में साथ शैतान जा रहा है, औलादों को शैतान हो तो बनते बेचारी सारी रात उसके साथ खेलता है, खूब तमाशे कराता है, चल ये कर ले चल वो कर ले, वो कहता जादू हो गया पागल हो गया ये हो गया तो ये हो गया, धमकाना हो कुछ भी नहीं सिवाय क्या कि तवाय रसूल नहीं है हमारे घर, खाना हराम बैठना हराम घरों में हराम खरीदना हराम घर हराम सब कुछ हराम फुल अजीब है ना, चिल्ला मारे चिल्ला मारे से घर है वापिस आ तो बड़ा वो बन गए भाई मस्तानी बन गए, चिल्ले से वापिस आए तो कितनी सुनतें सीख के और कितनी सुनतें घर में इस्तेमाल हो रही है, इस प्रैक्टिकल लाइफ दीन इज प्रैक्टिकल है, जिक्र करके गए जिक्र करके गएगा तो तुम कौन से बाजीज बंजामी बन गए हो, जुनेद बगदादी बन गए हो, जिंदगी जिक्र के बाद तुम्हारी जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, तभी तो आज जिक्र भी असर नहीं होना लोगों पे, असर नहीं होना लोगों पे, अदब ही नहीं है शेख मुरीद का भी तभी इसी ने मुझे बताया, एक मुरीद लिखता है अपने शेख को अंदाजा लगा रहने वाला भी वो मक्के मुकदमे का वहां कहते मैं अपने शेख को जो मेरे शेख कोई बातें कहता है मैं उसके खिलाफ बातें करता हूं, जब उसके खिलाफ बातें करता हूं तो उसको गुस्सा आता है चिढ़ता है, जब वो चिढ़ता है तो मुझे मक्खन का और शहद का मजा आता है, ये आजकल की मुरीद है, जब मेरे शेख चिढ़ता है तो मुझे किसका मजा आता है मक्खन और शहद का मजा आता है, और कहते जी मैं खलीफा हूं उस शेख का, वो तो मुरीद भी नहीं हो सकता वजह क्या है कि हराम है अंदर सब कुछ, जिंदगी तबाय रसूल पे नहीं सब हराम है, ख्वाहिशात पर है जिंदगी, इसको तसव्वुफ को हमने बदनाम कर दिया, पीरी मुरीदों को हमने बदनाम कर दिया, क्या बड़ा रुतबा है पीर और शेख का मुरीद का, उठा के देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या जमाना थे, ये बाबा फरीद शकरगंज जैसे शेख होते थे और हज साबिर पिया जैसे उनके मुरीद होते थे, उनकी जिंदगी उठा के देखें, अशराकुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह जैसे मुरीद होते थे और उनके शेख अल्हम्दुलिल्लाह कितने बड़े शेख, उनको जाके देखें कैसे होते थे, हस बाकी बुल्ला शेख होते थे सुभान अल्लाह, मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह मुरीद होते थे, वही चल रहा है सिलसिला, आज की मुरीद बता मिसाल दे दी आपको, जब शेख मेरी बात करता है मैं उसके खिलाफ चढ़ता हूँ, जब उसके खिलाफ मैं करता हूँ जब उसका गुस्सा चिढ़ता है तो मुझे मजा आता है मक्खन का उसका शायद का मक्का में रहता है, अब कहते हैं मैं रहता हूँ मक्का में हुआ मैं खलीफा हूँ, लानत ऐसे इंसानों पर जो ऐसी हरकतें करते हैं, ये मैं आपको बताऊँ तसव्वुफ की बात करूँ, क्यों कि मैं बताया ना जिक्र का असर नहीं होगा, वैसे खाना काबू में बैठ के आदमी करे जब तक उसमें तबाह रसूल नहीं होगा, बात नुकता समझ आ गई ना, ये है असल इलाज हमारी पूरी उम्मत का, आज कोई इलाज नहीं है कोई चिल्ले नहीं कोई दुआएं नहीं कुछ भी काम नहीं आएगी, वाहिद एक लाने का है भला ओला फदल वाले को। تم پر جو میں نے فضل اور رحمت نازل کیا ہے نا اس سے علاج کرو معاذ کا, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں, اس کا علاج نہیں, تم پاک نہیں کر سکے گی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے, اور جب بھی کوئی مصیبت آئے یاد رکھیں اپنے گھر میں نافرمانی دیکھیں, کسی بچے کو بچی کو نافرمان ہوتے دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ کچھ بھی نہیں اس کے علاج, ہم سے سنت قطع ہو رہی ہیں, ہمارے گھر میں سنتیں نہیں ہیں, خلاف سنت ہمارا کھانا ہے, بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, ایک سنت بھی نہیں قطع ہونی چاہیے, سوراخ بن جائے گئے, وہ ہمارا روٹین لائف بن جائے, ہمیں آٹومیٹکلی وہ زندگی میں چلے, جاتے ہیں سوئیں تو ہم اسی طریقے سو رہے ہیں, اٹھیں تو ویسے آ رہے ہیں, وضو کریں تو وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں, اور جناب جوتا پہنے تو اسی طرح, وہ ایک نیچر بن جائے, انسان کی ہیبٹ بن جائے, کس طرح ہمیں زندگی کی روٹین بن گیا. اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے.